मैं सुधीर कुमार शर्मा, बीए पार्ट थर्ड, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, आज आपको फारसी और हिंदी साहित्य के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो एलपी शर्मा के किताब में संकलित है। साहित्य। साहित्यिक दृष्टि से मुगल काल प्रगतिशील था। इस समय में विभिन्न भाषाओं के साहित्य का निर्माण हुआ। नवीन रचनाएं और अनुवाद दोनों ही दृष्टि से इस समय में महत्वपूर्ण कार्य हुए। फारसी, संस्कृत, हिंदी आदि के अतिरिक्त उर्दू भाषा का विकास भी उस काल में हुआ तथा विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं की उन्नति हुई। पहला, फारसी साहित्य। मुगल काल में फारसी कोष्टक पर्शियन कोष्टक बंद साहित्य की विशेष प्रगति हुई। अकबर के अतिरिक्त अन्य सभी मुगल बादशाह शिक्षित थे और सभी ने साहित्यिक प्रगति में सहयोग प्रदान किया। मुगल राज्य का संस्थापक बाबर एक विद्वान शासक था और उसके दरबार में विद्वानों का आदर किया जाता था। उसने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी अथवा बाबरनामा तुर्की में लिखी थी और वह इतनी श्रेष्ठ मानी गई कि 3 बार उसका फारसी में अनुवाद किया गया। विभिन्न यूरोपियन भाषाओं में भी उसका अनुवाद हुआ। बाबर तुर्की और फारसी में कविता करता था। उसका कविता संग्रह दीवान कोष्टक तुर्की कोष्टक बंद बहुत प्रसिद्ध हुआ। हुमायूं तुर्की तथा फारसी साहित्य का अच्छा ज्ञाता था तथा उसे दर्शन, गणित और नक्षत्र विज्ञान का भी ज्ञान था। उसने विभिन्न विद्वानों को अपने दरबार में संरक्षण प्रदान किया। हुमायूं के शासनकाल में मिर्जा हैदर दोगलत ने तारीख़े रसीदी नामक फारसी ग्रंथ लिखा, जिसमें मध्य एशिया के तुर्कों का इतिहास एवं हुमायूं के काल का विस्तार से वर्णन मिलता है। अकबर स्वयं शिक्षित न था, परंतु अपनी उदारता से ऐसा वातावरण बनाया जिससे उसके समय में साहित्यिक प्रगति सबसे अधिक हुई। उसने फारसी भाषा को राजभाषा बनाया और संस्कृत, अरबी, तुर्की, यूनानी और आदि भाषाओं की श्रेष्ठ पुस्तकों का अनुवाद कराया। एक इस कार्य के लिए उसने अनुवाद विभाग कोष्टक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट कोष्टक बंद स्थापित किया। उसके समय में अनेक विद्वानों का संरक्षण प्राप्त हुआ। अकबर के काल में संभवतः कुरान का पहली बार अनुवाद हुआ। इसके अतिरिक्त सिंहासन बत्तीसी तथा पंचतंत्र का लीला एवं दीमना नामक से दीमना सॉरी एक बार और आपके कन्फर्मेशन के लिए इसके अतिरिक्त सिंहासन बत्तीसी तथा पंचतंत्र का लीला एवं दीमना नाम से तथा अबुल फजल ने कालिया दमन का अयोरे ए दानिश यार ए दानिश नाम से अनुवाद किया गया। जहांगीर स्वयं शिक्षित विद्वान और आलोचक था। उसने अपने शासनकाल के 17वें वर्ष तक अपनी आत्मकथा तुझके जहांगीरी को लिखा। यद्यपि उसके पश्चात यह कार्य मोतमीद खां को दे दिया गया। जहांगीर के दरबार में विद्वानों का सम्मान था जिन्होंने मूल पुस्तकों की रचना की। जहांगीर के समय में अनुवाद का कोई विशेष कार्य नहीं हुआ। शाहजहां के समय में भी अनेक विद्वान हुए और उसके पुत्र दारा शिकोह के प्रयत्नों के कारण संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया गया। औरंगजेब स्वयं एक श्रेष्ठ विद्वान था। यद्यपि उसे कविता और इतिहास की पुस्तकों से घृणा थी, उसके समय में भी अनेक ग्रंथों की रचना की गई। उत्तरकालीन मुगल बादशाहों के समय में मुहम्मद शाह के समय तक तो फारसी भाषा राजभाषा बनी रही, परंतु उसके पश्चात उसका स्थान उर्दू ने ले लिया। परंतु फिर भी बाद के समय में अनेक पुस्तकें फारसी में लिखी जाती रहीं। इस प्रकार संपूर्ण मुगल काल में फारसी साहित्य को राज्य का संरक्षण प्राप्त होता रहा और उसकी प्रगति होती रही। फारसी साहित्य में मुख्य स्थान आत्मकथाओं एवं ऐतिहासिक पुस्तकों का है। बाबर की आत्मकथा तुझके बाबरी, अबुल फजल का अकबरनामा और आईने अकबरी, निजामुद्दीन अहमद का तबकाते अकबरी, गुलबदन बेगम का हुमायूनामा, जौहर का तज़किरियातुल वाक़ियात, अब्बास सरवानी का तोहफ़ाए अकबर शाही उर्फ तारीख़े शेरशाह 1000 वर्षों का इस्लाम का इतिहास बनाम तारीख़े अल्फी, जिसे विभिन्न विद्वानों के सम्मिलित प्रयत्न से लिखा गया, बदायूनी का मुंतखब उत तवारीख, अहमद यादगार का तारीख़े सलातीने अफगाना, बजायद सुल्तान का तारीख़े हुमायूं और फैजी सरहिंदी का अकबरनामा आदि इतिहास की वे रचनाएं हैं जो कोष्टक तुझके बाबरी को छोड़ के कोष्टक बंद अकबर के समय में लिखी गई। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुझके जहांगीरी को लिखा और उसी के समय में मोती मीद खां ने अपनी अधूरी आत्मकथा को पूरा करने के अतिरिक्त इकबालनामा ए जहांगीर, ख्वाजा कामगर ने मासरे जहांगीर और निमायतुल्ला ने मकज्जम ए अफगानी, मुहम्मद कासिम फरिश्ता ने तारीख़े फरिश्ता और मुल्ला नहबंदी ने मुअश्शर रहीनी को लिखा। शाहजहां के समय की पुस्तकों में अब्दुल हमीद लाहौरी का पादशाहनामा, अमीनाई का जुवीनी का पादशाहनामा, इनायत खां का शाहजहांनामा और मुहम्मद सालेह का आलमे सालेह प्रमुख है। औरंगजेब इतिहास की पुस्तकों की रचना में विश्वास नहीं करता था, परंतु फिर भी उसके समय में विद्वानों ने स्वयं ही कुछ श्रेष्ठ पुस्तकों की रचना की। उनमें खफी खां की मुंतखब उल लुबाब, मिर्जा मुहम्मद काजिम का आलमगीरनामा, मुहम्मद शकी का नुएक दिलकुशा, ईश्वरदास का फतुहात आलमगीरी और सुजान राय की खुलासात उत्तारीख प्रमुख है। उत्तरकालीन मुगल बादशाहों के समय में भी अनेक ऐतिहासिक पुस्तकें लिखी गईं। इनमें से अधिकांश की रचना मुगल दरबार के विद्वानों ने की और अन्यों की रचना विभिन्न प्रांतीय स्वतंत्र सरदारों के संरक्षण में रहने वालों विद्वानों ने की। इनमें से प्रमुख गुलाम हुसैन की सिदरुल मुतखारिन, मोहम्मद अली की त्वारीख़े मुजफ्फरी, हरिचरण दास की त्वारीख चहार गुलजारे शुजाई आदि प्रमुख हैं। फारसी में दूसरा महत्वपूर्ण कार्य अन्य विभिन्न भाषाओं की पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया जाना था। संस्कृत की पुस्तकों में से महाभारत का अनुवाद नकीब खां, बदायूनी, अफूल फजल, फैजी आदि विभिन्न विद्वानों के सम्मिलित प्रयत्नों से किया गया। बदायूनी ने रामायण का अनुवाद किया, उसने अथर्ववेद को आरंभ किया और उसकी पूर्ति हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने की। लीलावती का अनुवाद फैजी ने किया। राजतरंगणी का अनुवाद शाह मुहम्मद शाहबादी ने, कालीय दपन का अबुल फजल ने, नल दमयंती का फैजी ने और हरिवंश का अनुवाद मौलाना शेरी ने किया। ये सभी कार्य अकबर के समय में हुए। शाहजहां के समय में उसके पुत्र दारा शिकोह के प्रोत्साहन से इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया गया। उसने उपनिषदों, भगवद गीता और योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में कराया। स्वयं दारा शिकोह ने एक मौलिक पुस्तक मंजुल बहरीन कोष्टक दो समुद्रों का मिलन कोष्टक बंद लिखी, जिसमें उसने हिंदू और इस्लाम धर्म को एक ही ईश्वर की प्राप्ति के दो मार्ग बताए। इसके अतिरिक्त अरबी, तुर्की और ग्रीक भाषाओं में भी बहुत से ग्रंथों का अनुवाद हुआ जो फारसी भाषा में की गई। बाइबिल का अनुवाद किया गया और कुरान की बहुत सी टीकाओं का फारसी में अनुवाद किया गया। औरंगजेब ने बहुत से अरबी ग्रंथों की सहायता लेकर फारसी में न्याय और कानून की एक पुस्तक फतवाए आलमगीर की रचना कराई। फारसी कविता के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए गए, यद्यपि वह बहुत श्रेष्ठ कोटि का न बन सका। हुमायूं ने स्वयं कुछ पदों की रचना की थी। अकबर के समय में फैजी, गिजाली और उर्फी फारसी के महत्वपूर्ण कवि हुए। अबुल फजल ने अकबर के दरबार में 59 कवियों के बारे में बताया है। जहांगीर और नूरजहां को भी कविता करने का शौक था। शाहजहां की पुत्री जहानआरा तथा औरंगजेब की पुत्री जेबुन्निसा भी कवित्रियां थीं। अधिकांश कविताओं का विषय प्रेम था। वह गजल, रुबाइयां आदि के रूप में तैयार की गई थीं। विभिन्न बादशाहों और सरदारों द्वारा लिखे गए पत्र भी फारसी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अबुल फजल और औरंगजेब द्वारा लिखे गए अनेक पत्रों को बहुत श्रेष्ठ माना गया है। मुनीर, राजा जयसिंह, अफजल खां और सदाउल्लाह खां आदि द्वारा लिखे गए पत्र भी प्रशंसनीय हैं। दूसरा, हिंदी साहित्य। मुगलों के भारत में आने के समय तक हिंदी भाषा ने साहित्यिक भाषा का रूप कर लिया था। बाबर, हुमायूं और शेरशाह के समय में हिंदी को राजकीय संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ, परंतु व्यक्तिगत प्रयासों से पद्मावत और युगावत नामक दो श्रेष्ठ ग्रंथों की रचना हुई। इसके अतिरिक्त हिंदी के कुछ अन्य ग्रंथों की रचना भी इस समय तक हो चुकी थी। अकबर की उदारता और धार्मिक सहनशीलता की नीति ने हिंदी साहित्य के निर्माण को प्रशस्त किया। उसके समय में हिंदी को राजकीय संरक्षण प्रदान किया गया, परंतु हिंदी साहित्य का निर्माण केवल दरबार के संरक्षण पर ही निर्भर नहीं रहा। व्यक्तिगत प्रयासों के कारण भी महान ग्रंथों की रचना इस काल में हुई। राजा बीरबल, राजा मानसिंह, राजा भगवान दास, नरहरि और हरिनाथ राज दरबार से संबंधित विद्वान थे। नंददास, विट्ठलनाथ, परमानंद दास, कुंभन दास आदि ऐसे कवि थे जिन्होंने अपने व्यक्तिगत प्रयत्नों से हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाया। इसके अतिरिक्त ऐसे अन्य अनेक व्यक्तियों के नाम लिए जा सकते हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य की सेवा की, परंतु उस समय के हिंदी विद्वानों में तुलसीदास और सूरदास का विशेष स्थान है। तुलसीदास ने प्रायः 25 ग्रंथों की रचना की, जिनमें रामचरितमानस और विनय पत्रिका का स्थान सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तुलसीदास का राज दरबार से कोई संबंध न था। उनका जीवन अधिकांशतया बनारस में व्यतीत हुआ, परंतु उन्होंने जिस प्रकार के दोहों और चौपाइयों की रचना की, उनकी नकल करने के प्रयत्न भी असफल हुए। उनकी रचनाओं का भाव, भावना, भाषा आदि सभी दृष्टियों से श्रेष्ठतम माना गया है। उतना ही श्रेष्ठ स्थान कृष्ण भक्त सूरदास का है। अब्दुर्रहीम खानखाना ने उनका संपर्क रहता था। वह अंधे थे और आगरा में ही रहते थे। उन्होंने सूरसागर में जिन पदों के संग्रह किया है वह भक्ति रस की श्रेष्ठतम रचनाओं मानी गई हैं। इस समय में एक महत्वपूर्ण स्थान मीराबाई का भी है, जिनके भजन हिंदी साहित्य में अभी तक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। परंतु अकबर के समय का हिंदी साहित्य अब्दुल रहीम खान खाना और रस खान की रचनाओं को सम्मिलित किए बिना पूरा नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त वह बहुत से मुसलमानों ने भी हिंदी साहित्य की सेवा की तथा अब्दुल रहीम ने सैकड़ों पद, दोहे और सतसाया तथा कृष्ण भक्ति पर लिखे रसखान के भजन और प्रेम वाटिका नामक काव्य ग्रंथ हिंदी साहित्य की अमूल्य निधियां हैं। अकबर का साहित्य सॉरी कन्फर्मेशन के लिए एक बार फिर, अकबर का समय हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल था, वह निसंदेह स्वीकार किया जाता है। जहांगीर और शाहजहां ने हिंदू विद्वानों का सम्मान किया। जहांगीर का भाई दानियाल हिंदी में कविता करता था और जहांगीर के दरबार में वृक्ष राय, बूटा, राजा सूरज सिंह अग्रूप गोसाई, राजा मनोहर लाल और बिशन दास जैसे हिंदी के विद्वान थे। शाहजहां के काल में भी हिंदी की पर्याप्त प्रगति हुई। सुंदर कविराय जिन्होंने सुंदर श्रृंगार लिखा, सेनापति जिन्होंने कवित रत्नाकर लिखा, कविंद्राचार्य जिन्होंने कविंद्र कल्पतरु नामक कविता को मिश्रित अवधि और ब्रज भाषा में लिखा, तथा शिरोमणि मिश्र, बनारसीदास भूषण, मतिराम, वेदांग राय, हरिनाथ आदि हिंदी के विद्वान शाहजहां से संरक्षण प्राप्त किए हुए थे। इसके अतिरिक्त कविदेव ने अपनी धार्मिक कविताओं की रचना की। पन्ना के प्राणनाथ ने, जिन्होंने प्राणपंथी संप्रदाय को आरंभ किया, और अहमदाबाद के दादू ने, जिन्होंने दादूपंथी संप्रदाय को आरंभ किया, अनेक धार्मिक कविताओं की रचना की। हिंदी के महान कवि बिहारी को राजा जय सिंह का संरक्षण प्राप्त हुआ था। उनके द्वारा रचित दोहे अभी तक हिंदी में श्रेष्ठ स्थान रखते थे। महाकवि केशवदास इस समय में ओरछा में हुए। उनके द्वारा रचित कवि प्रिया, रसिक प्रिया और अलंकार मंजरी का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। औरंगजेब ने हिंदी को संरक्षण नहीं दिया, परंतु फिर भी हिंदी राजाओं के संरक्षण और व्यक्तिगत प्रयत्नों से 18वीं सदी तक हिंदी की निरंतर प्रगति होती रही। इसके साथ साहित्य खत्म हो रहा है।